Iran Radio Podcast।
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। सियासत की दुनिया में लॉबिंग की अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अमेरिका में लॉबिंग एक शक्तिशाली सियासी हथकंडा है। इस देश में निर्णय लेने वाली और प्रभावशाली संस्थाओं में लॉबिस्ट भरे पड़े हैं। ये लॉबिस्ट अपने हितों को साधने में दिन रात लगे रहते हैं। इनकी पहचान के बिना अमेरिका में राजनीतिक गलियारों की गतिविधियाँ समझ पाना मुमकिन नहीं है। इसके लिए हमने प्रोफेसर एलन रोजेनथल की किताब और कुछ अन्य स्रोतों से लाभ उठाते हुए कुछ एपिसोड तैयार किए हैं। दोस्तों, अमेरिका में लॉबिंग पॉडकास्ट का ये पहला एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। आमतौर पर लॉबिंग का मतलब किसी से कोई काम लेना या दबाव डालकर वो काम करवाना होता है। राजनीति में इसका मतलब है अपने हितों की पूर्ति के लिए हुकूमत या सरकारी विभागों पर दबाव डालना या उन्हें प्रभावित करना। प्रभावशाली समूह, जिन्हें प्रेशर ग्रुप, लॉबिस्ट या सपोर्टर ग्रुप कहा जाता है, वो संगठित या असंगठित तरीके से निर्धारित लक्ष्यों और हितों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक प्रक्रिया में प्रासंगिक निर्णायक भूमिका रखने वालों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। मौजूदा राजनीतिक स्थिति को बदलने या उसे अपने हितों के अनुरूप बनाए रखने वाले इन ग्रुपों की गतिविधियों और कार्यों को लॉबिंग कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, लॉबिंग राजनीतिक प्रक्रिया या स्थितियों को प्रभावित करने और निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाना है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से किया जाता है। 16वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजी भाषा में लॉबी शब्द का प्रयोग हुआ था। ये शब्द ज्यादातर इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स के हॉल और गलियारों को संदर्भित करता था, जहां लोग प्रतिनिधियों के सामने अपनी मांगें रखते थे। अमेरिकी संविधान के संशोधन में वॉशिंगटन और अन्य राज्यों में प्रभावशाली समूहों और उनकी पैरवी का उल्लेख किया गया है। इसमें सरकार से अनुरोध करने के अधिकार की गारंटी के रूप में पैरवी के अधिकार को वैध करार दिया गया है। अमेरिका में शुरुआत से ही लॉबिस्ट राजनीतिक जीवन का हिस्सा रहे हैं। अमरीकी सांसदों द्वारा लॉबी शब्द का पहली बार प्रयोग 1808 में किया गया था। कहा जा सकता है कि तभी से लॉबी शब्द अमेरिका में राजनीति की शब्दावली का अटूट हिस्सा बन गया, और इसके बाद इसके बिना इस देश में राजनीति की कल्पना करना संभव नहीं रह गया। एलेक्सिस डी टोकेविले ने 1830 के दशक को अमेरिका में लॉबिंग की शुरुआत करार दिया है। टोकेविले का कहना है कि उस समय अमेरिका में प्रभावशाली समूहों के गठन और संगठन की जोरदार कोशिशें की गई थी। यह भी माना जाता है कि लॉबिंग की परंपरा 1869 से 1877 के बीच में अमेरिका के 18वें राष्ट्रपति यूलिसिस साइमन ग्रांट के शासनकाल में लोकप्रिय हुई। इतिहासकारों का कहना है कि ग्रांट की पत्नी ने उन्हें महल में धूम्रपान करने की इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए उन्होंने धूम्रपान करने और आराम के लिए विलार्ड होटल की लॉबी का इस्तेमाल किया, जो महल के पास स्थित थी। विलार्ड होटल की लॉबी में ग्रांट की निरंतर उपस्थिति के कारण राजनेता और अन्य लोग वहां पहुंचते थे और अपना अनुरोध या दृष्टिकोण प्रस्तुत करते थे। उसके बाद से आज तक अमेरिका में कई प्रभावशाली समूह उभरते रहे हैं। राजनीतिक अर्थ में शायद अमेरिका की तुलना में किसी भी देश में लॉबिंग के मूल्य और स्थिति को नहीं समझा जा सकता। अमेरिकी राजनीति पर नज़र डालने से लॉबिंग की प्रक्रिया और लॉबिस्ट कैसे काम करते हैं, इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। अमेरिका में लॉबिस्टों की गतिविधियों और एकाग्रता का क्षेत्र इस देश की कांग्रेस और सीनेट है। उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं का नंबर आता है। सत्ता के ये वो केंद्र हैं जहां लॉबिस्ट अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा करते हैं या अपने हितों को संभालते और सुरक्षित बनाते हैं। हालिया दशकों में अमेरिका की विधायी संरचना में सुधार और राज्यों के निर्णय लेने की शक्तियों में वृद्धि के बाद राज्य विधानसभाओं में लॉबिंग की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हुई। व्यवहारिक रूप से ये कहा जा सकता है कि अमेरिका में ऐसी कोई संस्था, समूह या संगठन नहीं है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक या अधिक लॉबी समूहों से संबंधित न हो। दूसरे शब्दों में, संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉबिंग विधायी प्रक्रिया का एक हिस्सा बन गई है। 1960 और 1980 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रभावशाली समूहों में 30% वृद्धि दर्ज की गई थी। लॉबिंग के लिए पहला कार्य जानकारी हासिल करना है। लॉबिस्ट कांग्रेस या सीनेट के सदस्यों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले वे भविष्य की योजनाओं और बिलों और उनकी मंजूरी या अस्वीकृति की संभावना के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। उसके बाद वे प्रस्तावित विधेयकों को अस्वीकार करने या समर्थन करने के चुनावी परिणामों पर शोध और जाँच करते हैं और प्रतिनिधियों को ये जानकारी देते हैं। तीसरे चरण में वे विधेयकों को पारित करने या स्वीकार या अस्वीकार करने के पर्यावरणीय, राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिणामों पर ध्यान देते हैं ताकि प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों का राजनीतिक रुझान निर्धारित किया जा सके। क्योंकि कांग्रेस और सीनेट के प्रतिनिधियों को अक्सर मुद्दों के बारे में अच्छी जानकारी नहीं होती, ये समूह इसका फायदा उठाते हैं और जानकारी प्रदान करते हैं या वे जो चाहते हैं उसे निर्देशित करते हैं। लॉबिस्ट या प्रेशर ग्रुप प्रत्यक्ष रूप से कानूनों के लागू करने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। इस तरह के ग्रुप्स कभी भी सीधे तौर पर चुनावों में भाग नहीं लेते और प्रशासनिक कार्यों की भी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते। ये हमेशा प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया से खुद को दूर रखते हैं। ये लोग अनुभव और स्रोतों के बल पर अपने शिकार का चयन करते हैं। पहले पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसका उचित समय और स्थान पर इस्तेमाल करते हैं। कार्य के आधार पर लॉबी को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जनसमूह और विशिष्ट समूह। जनसमूहों में कई सदस्य होते हैं और बड़ी संख्या में सदस्यों के कारण वे प्रभावशाली होते हैं। ये समूह सदस्यों को संगठित करके या लोकप्रिय प्रवाह बनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक सक्रिय होते हैं। लेकिन विशिष्ट समूह अलोकतांत्रिक होते हैं और लगभग सीमित संख्या की राय और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंपनियां और वाणिज्यिक संगठन और सरकार के भीतर प्रभावशाली समूह विशिष्ट समूहों में से हैं। विषय वस्तु के संदर्भ में लॉबी को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, उद्योगों और कंपनियों की लॉबी और एकल विषय लॉबी। उद्योगों और कंपनियों की लॉबी पूरी तरह से विभागीय होती है और एक विशिष्ट औद्योगिक समूह के हितों और लक्ष्यों का ख्याल रखती है और केवल उसी समूह के सदस्यों तक सीमित है। ट्रेड यूनियनें, पेशेवर संगठन, फार्मास्यूटिकल, हथियार, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, परिवहन, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन उद्योगों की लॉबी औद्योगिक और कॉरपोरेट लॉबी के उदाहरण हैं। प्रदर्शन के प्रकार के मामले में उद्योगों और कंपनियों की लॉबी अभिजात समूहों में शामिल होती है। एकल मुद्दे वाली लॉबी में समूहों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है और उनके लक्ष्य क्रॉस सेक्टोरल और बड़े होते हैं। ये लॉबी एक और मानव जाति के सार्वजनिक हितों और उसके सार्वजनिक अधिकारों की रक्षा करने का दावा करती है तो दूसरी ओर प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करने का दावा करती है। इस प्रकार की लॉबी में अक्सर भौतिक, वाणिज्यिक या सरकारी हित नहीं होते और उनका संगठन पेशेवर और क्षेत्रीय हितों के बजाय चिंताओं के क्षेत्र में हित और समझ के मुद्दों को साझा करने पर आधारित होता है। इस लॉबी में सदस्यता जनता के लिए निःशुल्क होती है और उन्हें उनके कार्य के संदर्भ में लोक लुभावन समूहों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एकल मुद्दे वाले जनसमूह के प्रमुख उदाहरणों में जातीय धार्मिक लॉबी, गर्भपात समर्थक लॉबी, बंदूक समर्थक लॉबी, पर्यावरण बचाओ लॉबी, महिला अधिकार समूह या रक्षा नीति लॉबी का नाम लिया जा सकता है। लॉबिंग तकनीक के संदर्भ में लॉबिंग को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, अप्रत्यक्ष लॉबिंग या बाहरी लॉबिंग और प्रत्यक्ष लॉबिंग या आंतरिक लॉबिंग। अप्रत्यक्ष लॉबिंग का मतलब घरेलू कार्यों और प्रयासों का समर्थन करने के लिए विधानसभाओं या असेंबलियों के बाहर की जाने वाली गतिविधियों से है। ये समर्थन विभिन्न समूहों के गठबंधन, लोकप्रिय लामबंदी और अंततः स्वयं लोगों से सीधे और मीडिया जनसंपर्क अभियानों और विज्ञापनों के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्यक्ष पैरवी या अंदरूनी सूत्रों का इस्तेमाल मूल रूप से तब किया जाता है जब कोई संगठन किसी कानून के किसी विशिष्ट भाग पर अपनी सहमति या विरोध जताना चाहता है। प्रत्यक्ष पैरवी का अर्थ है विधायी प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत हस्तक्षेप। अदालती कार्यवाही के दौरान गवाही देना, विचार व्यक्त करने के लिए अधिकारियों से संपर्क करना, अधिकारियों के साथ अनौपचारिक संपर्क स्थापित करना, अनुसंधान और शोध परिणाम और आंकड़े तैयार करना, उन्हें प्रस्तुत करना, प्रस्तावों का मसौदा तैयार करना और कानून साजों को सलाह प्रदान करना प्रत्यक्ष लॉबी रणनीतियों में शामिल है। प्रत्यक्ष लॉबी के कुछ सिद्धांत इस तरह हैं: उपस्थिति, दृढ़ता, संक्षिप्तता और अनिश्चितता। अगर कोई विरोधी नहीं है तो प्रत्यक्ष लॉबी का बिल पारित हो जाएगा। इसके अलावा कई अप्रत्याशित घटनाएं इससे संबंधित होती हैं, जैसे कि विधेयक के पारित होने की संभावना के बारे में अंतिम क्षण तक कुछ भी निश्चित नहीं माना जा सकता। दूसरे, प्राथमिकता तय करना, क्योंकि लॉबिस्ट और संगठन अपनी सभी योजनाओं को एक साथ लागू नहीं कर सकते, इसलिए प्राथमिकताओं को स्वयं पहचानना होता है और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण को चुनना होता है। सच्चाई यह है कि लॉबी की शक्ति और प्रभाव का क्षेत्र सिर्फ अमेरिकी विदेश नीति तक ही सीमित नहीं है। विभिन्न राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी लॉबी की जाती है। अमेरिकी घरेलू राजनीति के क्षेत्र में ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति पद का कोई भी उम्मीदवार, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, ज़ायोनियों की मंजूरी और उनके वित्तीय समर्थन के बिना चुनाव जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लॉबी कोई केंद्रीकृत नेतृत्व वाला संगठन नहीं है और निश्चित रूप से यह अमरीकी विदेश नीति को नियंत्रित करने की कोई साजिश नहीं है। लॉबी की राजनीतिक शक्ति इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि ये चुनाव अभियानों के दौरान राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बयानों को प्रभावित करती है, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका विदेशी और घरेलू राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अमरीका में कुछ कंपनियों के पास पूर्णकालिक लॉबिस्ट होते हैं, और जो कंपनियाँ पूर्णकालिक लॉबिस्ट को नियुक्त करने में सक्षम नहीं होती, वे अनुबंध लॉबिस्टों पर निर्भर रहती हैं। आज संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्यिक कंपनियों, यूनियनों और यहाँ तक कि विशेष समूहों द्वारा अनुबंध लॉबिस्टों को नियुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अमेरिका में अलग अलग राज्यों में लॉबिंग अलग अलग तरह से होती है। प्रत्येक राज्य में लॉबिंग से संबंधित अलग अलग कानून हैं। लॉबिस्टों को इन कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। लॉबिस्टों को प्रत्येक राज्य में अलग अलग विधायी वातावरण के अनुकूल होना चाहिए। कोलोराडो असेंबली में जो प्रभावी हो सकता है, संभवतः टेक्सास में पूरी तरह से वो अप्रभावी हो। इसके अलावा एक लॉबिस्ट को प्रत्येक असेंबली की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल काम करना होता है, जो हर कार्यकाल में बदलती रहती हैं। लॉबिस्ट को जीत कर आने वाले नए लोगों के साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा विधायी संरचना, नीति निर्माण पैटर्न और शक्ति को विभाजित करने का तरीका सभी महत्वपूर्ण कारक हैं जो लॉबिंग को प्रभावित करते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसलिए अगर किसी लॉबिस्ट के अपने राज्य में सत्तारूढ़ राजनीति दल के साथ अच्छे संबंध नहीं है तो उसे सफलता का अनुभव प्राप्त होना बहुत कठिन हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, अपने लॉबी और लॉबिंग के बारे में पॉडकास्ट का हमारा पहला एपिसोड सुना और इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। इस एपिसोड में हमने अमेरिका में लॉबी और लॉबिस्ट की अवधारणा का परिचय कराते हुए राजनीतिक क्षेत्र में इसके इतिहास और प्रकारों के बारे में बात की। अगले एपिसोड में हम आपको अमेरिका में लॉबी के प्रकारों से परिचित करवाएंगे, यानी लॉबी के बारे में जानकारी देंगे जो इस देश की सबसे शक्तिशाली लॉबी है।